इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज मंगल 19 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी अक्टूबर की है, 26 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है। मेरा नाम है अदील, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं द सनराइज शो विद मी अदील, मेरा और आपके साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, यहाँ की पसंद के म्यूजिक हटा दें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से आपके दोस्त अदील हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होगी, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। एंड इट्स अ नाइस माइल्ड मॉर्निंग हियर इन कराची, द ह्यूमिडिटी इज लो, some land breeze is blowing, so थोड़ी सी खुनकी भी है, खुनकी का एहसास जरूर है हवा में। हम सही मानों में कह नहीं सकते कि आपको खुनकी या सर्दी लगी हो, लेकिन पंखे जरा आप हल्के कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अपने अगर आप चाहें तो ACs भी आप बंद कर सकते हैं, बिकॉज इट इज प्रीटी ओके एट नाइट। एंड अगर आपके घर में वेंटिलेशन का सही इंतजाम है तो ये सूरत हाल है इस वक्त कराची के मौसम की। ऑलराइट, प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट, प्रोग्राम में अगर आप हिस्सा डालना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील, दैट्स वन वर्ड। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो मी एट अदील अंडरस्कोर अजहर, दैट्स ADEEL अंडरस्कोर AZHAR। All right, 7:24 अभी हुए हैं। जुनैद भाई की आवाज आप सुन रहे थे, आवारा, that was from Vital Signs actually, and hope you guys enjoyed that song, and not a bad song actually to kick start the show। All right, आप लोग के मैसेजेस मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। ज़ाहिर है प्रोग्राम में आज भी T20 वर्ल्ड कप का काफी जिक्र होने वाला है। पाकिस्तान अपना दूसरा मैच T20 वर्ल्ड कप का, काफी पाकिस्तान को जो है वो दिलचस्प किस्म का शेड्यूल मिला हुआ है। दो इम्पोर्टेंट मैचेस पाकिस्तान के यके बाद दीगरे सिर्फ एक दिन के वक्फे के बाद जो हैं वो हो रहे हैं, और इस लिहाज से भी ये दे आर बोथ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, बिकॉज नाउ पाकिस्तान टीम इज ऑन अ हाई। इंडिया को हराने के बाद अपनी ग्रुप की जो दूसरी इम्पोर्टेंट टीम है न्यूजीलैंड, उसके साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और जाहिर है काफ़ी सारी जगहों पर आपको खुद भी आपकी अपनी ज़ाती तौर से असेसमेंट होगी कि पाकिस्तान अपना आज का मैच अगर जीतने में कामयाब हो जाता है, जो कि हमें काफ़ी पूरी उम्मीद होना पड़ेगा, बिकॉज इस मैच के हवाले से आई वॉज ऑलवेज वेरी होपफुल। नवान शारजा में हो रहा है ये मैच, UAE में पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। इन सब चीज़ों के हवाले से हम आगे चल के बात करेंगे। पाकिस्तान इफ दे विन द गेम, पाकिस्तान तकरीबन काफ़ी हद तक अपनी पोजिशन जो है वो सिक्योर कर लेगा फॉर द सेमीफाइनल, और जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान हैज़ टू प्ले अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड एंड नामीबिया, एंड वी रियली होप दैट पाकिस्तान वो मैचेस जीतने में कामयाब हो जाएगा। इवन दो अफगानिस्तान खुद पहुंचे ना पहुंचे, किसी एक टीम का जो है वो मुस्तकबिल काफ़ी ख़राब करेगी इस वर्ल्ड कप में, लग ये रहा है, बिकॉज अब तक हमने उनको जो वार्म अप गेम्स और उसके बाद अपने पहले गेम में इवन दो इट वॉज अगेंस्ट स्कॉटलैंड खेलते हुए देखा है, बैटिंग हो या बॉलिंग हो, दे लुक प्रिटी डेंजरस, बी वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात से, बहुत सावधान जिसे कहते हैं अटेंशन। तो ये सूरत हाल है, तो आज के मैच पे बिल्कुल तफसील से जिक्र करेंगे। इसके अलावा और भी मैच होने वाले हैं आज, और करंट वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज वांट रियली ऑफ टू अ गुड स्टार्ट फॉर श्योर, इन फैक्ट देर ऑफ टू अ प्रीटी बैड स्टार्ट, उनका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होगा। दोनों पहले मैचेस अपने हार चुकी हैं टीमें, साउथ अफ्रीका हैड अ वेरी नियर लॉस, अ वेरी क्लोज लॉस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वेस्ट इंडीज की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। चैलेंजिंग, ग्रेट। रमान खिलजी साहब, आज का पहला मैसेज मुझे नजर आ रहा है सर, थैंक यू सो मच, और बिल्कुल सर हमने आपकी हाजिरी लगा दी है। कहते हैं योर थॉट्स एंड वर्डिक्ट ऑन टुडेज मैच, एज आई सेड अर्लियर, आई थिंक इस मैच के हवाले से शायद मैं पहले भी अपने ख्यालात का इजहार कर चुका हूँ। आई फाइंड पाकिस्तान, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमने इंडिया को हरा दिया, इवन इफ वी हैड लॉस्ट टू इंडिया, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस मैच में फेवरेट के तौर से आगाज कर रहा होगा, और नाउ आई थिंक इट विल बी टफ फॉर न्यूजीलैंड टू बीट पाकिस्तान इन दीज कंडीशन, एटलीस्ट शारजा में रिमेंबर ये मैच होगा। ऑलराइट जी, फिजान याद कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट फ्रेटर्निटी इज हार्श ऑन हारिस रऊफ, ही हैज डन अ डिसेंट जॉब इन T20 इंटरनेशनल एंड T20 करियर, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स, हिज डेथ ओवर एवरेज इज बेटर देन बुमराह, आमिर एंड जॉर्डन इन T20। बस जी, बस लेजेंड है, उसमें तो खैर कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से अब हम ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो है ना जी हम देख लेंगे इसको। इन्होंने कितने 19 विकटें ली हुई हैं, एक 12 की एवरेज से 7.6 की इकोनॉमी के साथ जो है वो हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है। कहते हैं मोस्ट विकेट इन T20s इन द ईयर 2020. So Haris Rauf has taken more wicket than Rashid Khan. Naturally, this includes the domestic T20 as well. Let's see. इस वक्त तो स्टैटिस्टिक्स अच्छे ही दिख रहे हैं, बिकॉज ज़ाहिर है वी आर टेकिंग अ वेरी पॉजिटिव व्यू टुवर्ड्स दीज थिंग्स. लेकिन वेल सी, वी विल सी, अल्लाह बेहतर करे जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है जी? नजम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, थैंक यू सो मच सर. यूसुफ नवाब साहब आदाब कहते हैं. बशीर अहमद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मुझे मालूम नहीं टीम में कोई तब्दीली होगी या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नवाज़ तो खिलाना चाहिए. नहीं नहीं यार, विनिंग टीम में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं है. पाकिस्तान ने जैसी टीम खेली थी उसको देखे ना, उसको तब्दीली की ज़रूरत बनती क्या है आपको? आई मीन आपका पाकिस्तान का, अगर हम कम अच्छे परफॉर्मर्स की बात करें पिछले मैच में, तो हसन अली थे जिन्होंने अपने चार ओवर्स में काफ़ी महंगे थोड़े से साबित हुए. लेकिन क्या वुड यू वांट टू ड्रॉप हसन अली? नो. जब आप हसन अली को ड्रॉप नहीं करना चाहते तो फिर कौन बंदा बनता है ड्रॉप करने के लिए? दैट्स इट, लेट्स मूव ऑन. पीर जहीर साहब थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. और कहते हैं अफगानी टीम इज स्ट्रांग. बिल्कुल दे आर स्ट्रांग, दे आर लुकिंग वेरी गुड, वेरी अग्रेसिव क्रिकेट दैट दे आर प्लेइंग सर. काफी जारहियत के साथ जो है वो उनकी क्रिकेट इस वक्त जारी है, अब तक जो हमने जो उसका मुशाहिदा किया है. कहते हैं फाइनल मैच ऑफ फुटबॉल एट मुबारक विलेज टुडे, जबरदस्त सर, एंजॉय द मैच, एंजॉय द टूर्नामेंट. डॉक्टर जीशान बेग, आपने खबर शेयर की अबाउट डॉक्टर अनीता जैदी, और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर अनीता, एंड शी हैज बीन इलेक्टेड टू द यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिसिन, NAM. हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा जो है आखान यूनिवर्सिटी से जो है वो इनका ताल्लुक रहा है. इनफैक्ट शी वॉज इन द इनॉग्यूरल बैच ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी. इनके जो हस्बैंड है डॉक्टर साद शफकत, वो हमारे बड़े रेगुलर लिसनर भी हैं. वैसे आजकल पाकिस्तान वो तशरीफ ले आए, बल्कि इस हफ्ते डॉक्टर साद से जो है वो निश्चित भी लगनी है. सो चलें जी, जबरदस्त है बिल्कुल. उन्होंने ही शेयर दिस न्यूज विद मी व्हेन दिस गॉट्स अनाउंस, और जबरदस्त जी, डॉक्टर साहब इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भी मुंसलिक कर रही हैं. शी इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स, इनफैक्ट हैं अभी भी, और जबरदस्त जी, माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे. खुर्रम हुसैन कहते हैं अंकल, आज हमारे कजन छोटे भैया अहफाज जमान की बर्थडे है, वो एटलांटा जॉर्जिया में रहते हैं, प्लीज उनको हमारी तरफ से बर्थडे विश कर दें. थैंक यू. आयजा अब्दुल्ला और इब्राहिम की तरफ से उनके कजन अहफाज जमान जो एटलांटा जॉर्जिया में रहते हैं, उनको हैप्पी बर्थडे, और आई होप ही विल हैव अ गुड डे देयर, एंड आई थिंक यू गाइस शुड गो एंड मीट हिम समडे. एटलांटा जॉर्जिया, नाइस प्लेस. ऑलराइट, फरोख शाह साहब थैंक यू सो मच इस खूबसूरत सी सुबह के साथ. हाजी सैयद अदील अजहर और उनके सुनने वालों को सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम सर. मोहम्मद अली रऊफ साहब कहते हैं एनी रियल अपडेट ऑन TLP धरना एंड डिमांड स्टेटस? गवर्नमेंट सेज ऑल नेगोशिएशंस गोइंग वेल, बट सोशल मीडिया एंड टीवी चैनल्स सेइंग अदरवाइज. देखिए जी, हुकूमत ने जाहिर है हमेशा की तरह हथियार डाल दिए हैं डॉक्टर साहब, और अब सीन ये है कि TLP मुझे लग रहा है कि अब वो स्टेट के दायरे इख्तियार से जो है ना वो बाहर आ चुकी है. दे आर अ स्टेट विद इन द स्टेट नाउ. वो एक 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 नॉन स्टेट एक्टर बन चुकी है वो, सीरियसली स्पीकिंग. अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका. कल शेख साहब ये बात मान चुके हैं कि कोई पसंद करे या ना करे, तीसरी सबसे मकबूल जमात है पंजाब की, वो ये बात भी बोल चुके हैं. यानी उनका कहना यह है कि एक मैसिव पब्लिक सपोर्ट जो है वो TLP के साथ है. और जाहिर है TLP के बाद दो ऑप्शन थे, या तो उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती या फिर अपनी धरनों और सड़क बंद करने के लिए. दे चोज द लेटर वन. सो बहरहाल अब सीन ये है कि उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है. उन्होंने कहा है जी देखिए जी, 3 दिन में जो है ना वो हमारे जो मुतालबात शेख साहब मानकर आ गए, सारे के सारे मुतालबात वो कबूल कर लें, वरना हम एक बार फिर से इस्लामाबाद की जानिब जो है अपना मार्च शुरू कर देंगे. आज अब सिलसिला ये है कि आपने देख लिया कि काफ़ी डेडिकेटेड इनके कारकुन हैं. इनका PDM वाला सीन नहीं है, डेडिकेटेड लोग हैं, जज्बे से भरपूर हैं वो. अब मुतालबात सही हो गलत हो वो एक बिल्कुल डिफरेंट डिस्कशन है. आई मीन देयर इज एब्सोल्युटली, बट ये समझ रहे हैं कि जी दीन की खिदमत कर रहे हैं. इससे पहले आपको पता है कि मखसूस मसालिक के लोग समझते थे कि जी वो इस तरह की चीज़ों दीन की खिदमत कर रहे हैं, अब इसमें एक नया मसलक भी जो है वो ऐड हो गया है. सो इनको जरा गवर्नमेंट को निमटना जरा मुश्किल काम होने वाला है. लेकिन अब सीन ये है कि 3 दिन का उन्होंने टाइम दिया. भाई अपडेट ये है अभी के वो अपने जैसे कहते हैं ना कि अपनी जगह पर बिल्कुल मौजूद हैं इस वक्त. अपनी क़यादत के जो उनके कारकुनान हैं उनकी क़यादत की जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस की इंतज़ार कर रहे हैं. शेख साहब ये कह चुके हैं कि जी ये मुतालबे काबीना में लेकर आएंगे, और लेट्स सी काबीना इस हवाले से जो है वो क्या डिसीजन लेती है. ठीक हो गया जी, और क्या सिलसिला है? फिलहाल हम जरा यहाँ पे रुकते हैं, बिकॉज वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कमर्शियल ब्रेक नाउ. विल कैच यू राइट आफ्टर दिस, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. The Sunrise Show with Adil is the name of the show. If you wish to participate in the program, program agar apna hissa dalna chahte hain, to phir aap tweet kar sakte hain mujhe with the hashtag Sunrise with Adil. That's one word. Iske ilawa, aap mujhe agar follow karna chahte hain Twitter pe, so that's Adil underscore Azhar. That's ADEEL underscore AZHAR. और चलें जी, क्रिकेट के अलावा भी दुनिया में आपको पता ना कि बहुत कुछ हो रहा है, और दुनिया में जो है ना वो बहुत कुछ जो हो रहा है, सबसे पहले हम टेस्ला के हवाले से बात करते हैं. भाई टेस्ला का तो कल जैसे कहते हैं ना कि कमाल हो गया. दुनिया की जो है वो छठी कंपनी बन गई है टेस्ला, जिसने अपनी पांचवी कंपनी बन गई है याद आ गया सही, जिसने $1 trillion की जो है वो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसको क्रॉस कर लिया. यानी इस कंपनी की टोटल वैल्यू, अगर आपको आज जाके टेस्ला को खरीदना है, आप बोले मैं पूरी टेस्ला खरीदना चाहता हूं, तो आपको जो है ना वो तकरीबन कोई $1 trillion and $22 billion जो है ना वो, यानी $1,022 अरब आपको जो है ना वो पे करने पड़ेंगे उनके, अगर हम आज की शेयर प्राइस के हवाले से बात करें. बिकॉज आज तो इनफैक्ट आज से मुराद ये कि अमरीका में तो अभी आज ही चल रहा है ना, लाइक हमारे लिए वो कल गुजर गया. कल उनकी शेयर प्राइस जो है टेस्ला की, it actually climbed as high as 12.6% in a day. ek din mein tesla ki share price mein jo hai wo 12.6% izafa hua. ab iska jo inko fayda hua hai, wo inko fayda ye hua hai ki iske jo malik hai, we know elon musk duniya ke waise hi ameer tareen aadmi wo thode se aur ameer ho gaya wo इस वजह से, बिकॉज आई थिंक 230 odd something billion dollars जो है वो उनकी इस वक्त टोटल वेल्थ पहुंच गई है. ऐसी हुआ क्या, ऐसी क्या खबर आ गई टेस्ला के हवाले से जिसकी वजह से उनकी शेयर प्राइस में एक दिन में इतना इजाफा हुआ? सो या हुआ ये कि अमेरिका की एक मशहूर रेंटाकार कंपनी है जिसका नाम है हर्ट्स. ओके, वैसे पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन अमेरिका, कंपनी अभी जब कुछ दिनों पहले ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई थी, हमने सुना था जी हर्ट्स बैंकक्रप्ट हो गई है, बट देन उसको सहारा मिला, कुछ हुआ, पीपल बेल्ड इट आउट एंड ऑल, फंडिंग मिली उनको बैंकिंग से, अब अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रही है. और उन्होंने जो है ना वो मारा एक मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक ये मारा है. उन्होंने कहा है कि जी आपको पता है ना कि आजकल एनवायरनमेंट और इलेक्ट्रिक कार्स और ग्रीन और ये सारी चीज़ें, ग्रीन एनर्जी, ये सब चीज़ों की बातें चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा. इनफैक्ट नवंबर के महीने में आप बहुत ज़्यादा इसके हवाले से सुन रहे होंगे, बिकॉज COP26 नामी एक कॉन्फ्रेंस ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाली, जिसकी मैं बाद में बात करूँगा कभी टाइम मिले. क्रिकेट के अलावा कुछ और टाइम मिलेगा तो हम उस पर बात कर लेंगे. लेकिन टेस्ला ने किया क्या है, टेस्ला माफ कीजिएगा हर्ट्स ने, हर्ट्स हैज ऑर्डर्ड 100,000 टेस्ला. उन्होंने टेस्ला की 100,000 गाड़ियों का ऑर्डर जो है वो प्लेस किया है, और इस जाहिर ऑर्डर की बहुत बड़ी वैल्यू है, और इस ऑर्डर की जो है ना वो बहुत बड़ी वैल्यू, दिस एक्चुअली गोइंग टू बी अ $4.2 billion का ही उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है. $4.2 billion टेस्ला मॉडल 3. टेस्ला के अगर मैं गलती पे ना हूँ, देर इज मॉडल एस, देर इज मॉडल एक्स वाई एंड मॉडल 3. तो मॉडल 3 की उन्होंने जो है अगले 14 महीने में टेस्ला जो है वो उनको डिलीवर कर रहा होगा. और तकरीबन व्हाट हर्ट्स इज सेइंग दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस ऑर्डर, अब से 14 महीने बाद यानी 2022 के अख्तिताम में 1/5 ऑफ हर्ट्स इंटरनेशनल ग्लोबल फ्लीट विल बी मेड अप ऑफ दीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय टेस्ला. सो ठीक हो गया. अच्छा अब जो है ना वो बेसिकली इज ऑलवेज अ चैलेंज अराउंड दिस, बिकॉज देयर टेस्ला की जो मॉडल 3 की हम बात करते हैं तो वो तकरीबन कोई 200 miles, यानी आप लगा लें 200 miles पर चार्ज जो है ना वो चलती है. एक दफ़ा गाड़ी चार्ज की है तो आपको 200 miles तक जो है ना वो ले जा सकती है. तो अब जो असल मसला इलेक्ट्रिक गाड़ियों का होता है ना, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग, 200 miles इक्वल टू तकरीबन कोई 321 किलोमीटर या 320 किलोमीटर की जो है ना हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. टेस्ला का मसला जो है ना, इलेक्ट्रिक कार का मसला जो है ना, वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज. लोग अक्सर जो ये गाड़ियां लेते हैं US वगैरह में, खासतौर से मैं जानता हूँ, अपनी जो इंटर स्टेट पर ट्रैवल करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए जो है ना वो ये गाड़ियां ले रहे होते हैं. सो दिस इज अमेरिका में डिस्टेंसेस बहुत बड़े बड़े हैं ना, वो लोग बहुत गाड़ियां चलाते हैं. सो अब वहाँ पे ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा, बट या इन द शॉर्ट डिस्टेंसेज विद इन सिटी आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, ऑल करनी है, आपको थोड़े दिनों के लिए किसी शहर गए एंड यू सेड यस आई जस्ट वांट टू सी अराउंड द सिटी, सो आप बस रात में एक दफा चार्ज लगा दें. अच्छा मेरे पास मैंने ना कुछ इसमें स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है ना, वो हमारे बेटे बैठे हुए टेस्ला की काफी वीडियोस देख रहे होते हैं, वो बड़े वेरी अमेज्ड बाय, दे आर स्ट्रक बाय दिस कार, स्पेशली माय लिटिल वन. तो वो मुझे स्टैट्स वगैरह शेयर कर रहा होता, तो मुझे बता रहा था कि जनरली जो है वो लोग उनकी 80% ऑफ द पीपल से दैट दे चार्ज देयर कार डेली. सो डेली इतनी ड्राइव तो खैर किसी की होती भी नहीं है. सो इस वजह से बहरहाल ये एक चैलेंज उनके लिए जरूर होगा, बट आई एम श्योर हर्ट्ज ने जो है वो अपनी वर्किंग इस हवाले से जरूर की हुई होगी. सो दिस इज अ बिग ऑर्डर. जैसी इसकी खबर आई है उसके बाद से शेयर प्राइस जो है टेस्ला की, जैसे मैंने बताया 12.6% इन अ डे उसमें इजाफा हुआ है. इलॉन मस्क की दौलत में है, अरबों डॉलर का इजाफा हुआ है एक ही दिन में. और टेस्ला जो है इट हैज बिकम द फिफ्थ कंपनी टू क्रॉस अ $1 trillion वैल्यू. 1 trillion dollar का मतलब 1,000 अरब. ओके, 1 अरब होता है और यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी तकरीबन 350 अरब है. यानी टेस्ला जो है वो इस वक्त तकरीबन कुछ 4 पाकिस्तानी इकोनॉमीज के बराबर जो है वो उसकी वैल्यू हो चुकी है. जस्ट चेक आउट द डिस्पैरिटी इन द वर्ल्ड दैट वी लिव इन. अच्छा, ये जो 4 कंपनियां इनसे पहले हो चुकी हैं, ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स वेरी इजी टू गेस फॉर यू गाइस, एप्पल इज देयर, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक, इनफैक्ट परहैप्स द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी. माइक्रोसॉफ्ट इज देयर, अमेज़न, और उसके अलावा गूगल जो अल्फाबेट उनका जो पेरेंट कंपनी है, ये भी $1 trillion जो है ये कंपनी है. अब देखें बात बड़ी सिंपल है और वो ये है कि टेस्ला इसकी वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा है और वैल्यूएशन का ताल्लुक जो है आपकी शेयर प्राइस के साथ होता है. इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि टेस्ला जो है वो बहुत सारी गाड़ियां प्रोड्यूस करता है. टेस्ला अभी भी जो है इट ओनली प्रोड्यूसेस अ फ्रैक्शन ऑफ द कार दैट बिग प्लेयर्स लाइक टोयोटा एंड वॉक्सवैगन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. ले और इनफैक्ट द टेस्ला दे मेक अप लेस देन 1% ऑफ द टोटल कार सेल्स इन द वर्ल्ड. लेकिन जो इनका प्राइस इक्विटी रेशियो है, यानी इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अगर आप जो अर्निंग्स पर शेयर को कंपेयर करेंगे उसकी प्राइस के साथ, इट रन्स प्रीटी हाई, अराउंड 200 के करीब जो है ना उसका नंबर आता है. दैट एक्चुअली टेल्स यू दैट जो शेयर होल्डर हैं, जो इन्वेस्टर है, वो इस कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को बहुत हाई रेट करता है. सो या आई मीन क्वाइट अ स्टोरी दिस इज, नो डाउट. टेस्ला ने पिछले साल को 5 लाख के करीब जो है ना गाड़ियां प्रोड्यूस की थी. फोक्सवैगन दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है. दे प्रोड्यूसेस 9.3 मिलियन कार्स, यानी फोक्सवैगन ने 5 लाख की हैं और टेस्ला ने 5 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस की हैं और फोक्सवैगन ने जो है जर्मन ऑटोमोबाइल जाइंट, उन्होंने 93 लाख गाड़ियां प्रोड्यूस की हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया. बट अगर आप इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो फिर दुनिया की बाकी 9 कंपनियां जो है ना वो मिलके भी टेस्ला के बराबर नहीं पहुंचती हैं. सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग दिस कंपनी हैज बिकम. ऑलराइट, जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं. उमेर हफीज, थैंक यू सो मच. अरहम, उमेर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने बाबा के साथ गाड़ी में बैठे हुए, लेकिन अरहम इज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट. तो फिर मुझे नहीं पता आप नेवी के किस रैंक के, नेवी के जरा रैंक्स मुझे पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन सर आई एम प्रीटी श्योर ही विल बी वेयरिंग द सीट बेल्ट बाय नाउ. वकार, थैंक यू सो मच. मेहनाज, थैंक यू सो मच. एमर साज ने शेयर की है रिजवान की यह वीडियो, आईसीसी ने रिलीज किया. यार क्या कमाल वीडियो आईसीसी ने बनाई है, जो रिजवान प्रैक्टिस कर रहे थे मैच से पहले उस विकेट पे पीछे खड़े होके, और फिर उन्होंने एक्चुअल एग्जीक्यूट अपने इन शॉट्स को इन मैच में कैसे किया है. यार ये जो रिलीज शॉट है ना रिजवान का, वो जो एक पुल शॉट खेलता है लेग साइड पे, यानी आपको पता होता है इफ रिजवान इज प्लेइंग दिस शॉट, इसका मतलब यहाँ चौका आना है और उन्होंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया. सो इंडिया ने कल कोशिश भी की थी बड़ी इस जगह को कवर करने की, देखा था आपने, उन्होंने एक मिड विकेट और उन्होंने जो है ना एक डीप फाइन लेग भेज दिया था कि, लेकिन नहीं भाई ये पर्पल पैच ये होता है. ऑलराइट, एहसन यूनुस, थैंक यू. वासिफ महमूद साहब नलतर वैली में मौजूद है और माशाल्लाह क्या जबरदस्त बर्फ वर्फ यहाँ पे पड़ी हुई है, खूबसूरत मंजर. बर्फ का भी अपना ही एक समा होता है. डीजे सुमेर, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड. तहसीन अमजद, आप सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू. एंड देन वी हैव गॉट फैसल मुकीत, कहते हैं मॉर्निंग थॉट. द मोस्ट अनोइंग ग्रुप ऑफ पीपल यू विल फाइंड ऑन द रनिंग ट्रैक आर द वंस स्ट्रोलिंग इन ग्रुप्स चैटिंग एंड ब्लॉकिंग द वे. या एब्सोल्युटली यू आर सो राइट. वैसे वो जो पूरे पूरा ट्रैक को कवर कर लेते हैं ना, 4-5 दोस्त जा रहे होते हैं, वो फिर एक दफा ही नजर आते हैं, फिर आपको अगले महीने नजर आते हैं वो लोग. वो जो एक दिन होता है ना यार सुबह उठ गए क्या करें चलो आज पार्क चलते हैं. ऑलराइट, फलीम अली खान कहते हैं, फलीम अली खान ब्रो, हाफ ऑफ माय फैमिली सफरिंग फ्रॉम फीवर, माय फादर डॉटर वाइफ एंड माय सेल्फ नॉट वेल, प्लीज प्रे. भाई आप सबके लिए दुआएं फहीम, आई होप के सिम्टम्स, कोरोना इज स्टिल हेयर बट आई रियली नंबर कम हो गया लेकिन इट इज स्टिल हेयर राइट. सो आई रियली होप दैट देयर इज नथिंग सीरियस एंड प्रेयर्स फॉर यू and your family my friend. and then Sayyid Ali Hazar Gilani kehte hain good luck for team Pakistan win, zabardast speed Zaheer sahab, thank you. kehte hain Amin bhai, Rashid and Nasir sahab, sabko salam, that is great. Zulfi kehte hain I hope and pray we pay back to the Kiwis by handing over a huge humiliating defeat, Sood Sameed wapas kare. bilkul I think mamla kafi personal hua hua hai ye in logon ke sath. so Let's see. All right, Umair Babar कहते हैं जी आवारा जुनेद भाई की एल्बम का गाना था नॉट द वाइटल साइंस. चलें थैंक यू सो मच सर, आपने तो एल्बम के कवर्स जो हैं वो भी उसकी तस्वीरें शेयर की हुई है मेरे साथ. थैंक यू कुदूस अली साहब. गुड मॉर्निंग डॉक्टर शैला, थैंक यू सो मच. बेस्ट विशेस कहती हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को. उमेर दीवान एम रियान दीवान, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान. रिजवान इरशाद कहते हैं रिजवान प्रैक्टिस हिज शॉट दैट इज ग्रेट. एंड देन फैजान आलम, डॉक्टर फैजान आलम गुड मॉर्निंग कहते हैं अजीब सा सुकून है. सुकून है सर, सुकून है, अलग फीलिंग है, बिल्कुल डिफरेंट. हम तो भाई किया अपने ऑफिस में की सेलिब्रेशन कल छोटी सी. हमारे ग्रुप में एक दोस्त ने जो है ना इस्लामाबाद वाले ग्रुप में अरमुगान ने तस्वीर डाली, फिर मैंने अपने जो मेरी टीम का हेड ऑफिस की टीम का जो ग्रुप था व्हाट्सएप का उसमें मैंने भेजी. मैंने कहा सीखो इनसे ऐसे करते हैं सेलिब्रेट. बच्चों को फिर गैरत आ गई, बच्चों ने कहा बॉस ने बोला है सीखे इनसे, तो उन्होंने फौरन सीखा. फिर वो पैसे लेने आए, मैंने तो उनको ज्यादा पैसे दिए. मैंने कहा मेरी तरफ से, बल्कि वो शरीफ बच्चे वापस कर दिए उन्होंने. नहीं सर इतनी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं थी. एनीवे तो केक आया एंड देन वी हैड सम सेवरी आइटम्स एज वेल एंड या आई थिंक वी हैड अ गुड लाफ एंड वी ऑल एंजॉयड दैट. मैंने कहा पता नहीं मौका फिर मिले ना मिले, तो जितना मौका है इसको एंजॉय करो यार. जिसके अलावा खावर नसीम अंसारी कहते हैं अफगानिस्तान को अंडर एस्टिमेट ना करें, सेमीफाइनल तक पहुंच सकती है. नहीं नहीं पहुंच सकती है, अगर पहुंच ना भी पाए तो फिर ये किसी का मुस्तकबिल जो है ना वो खराब जरूर करेंगे. ओके जी, एंड देन वी हैव गॉट वासिफ अजीज कहते हैं टेस्ला ओनर रिव्यू ऑफ पाकिस्तानी लम्स एल्यूमिनाइट, डू चेक. ऑलराइट आई विल चेक इट आउट माय फ्रेंड. आदिल भाई टेस्ला का सुपर चार्जर कैन चार्ज इन जस्ट 50 मिनट्स फॉर 4 to 6 डॉलर. यार अगर आप किसी रोड ट्रिप पे निकले हुए हो ना तो 50 मिनट्स इज अ वेरी लॉन्ग टाइम, विच इज व्हाई आई एम सेइंग के अमेरिका में लॉन्ग रूट्स के लिए टेस्ला अभी भी थोड़ा सा जरा लोग पसंद ना करें, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी बातें. ऑलराइट एंड देन वी हैव गॉट रिजवान इरशाद, मॉडल 3 टेस्ला हैज एन अप्रोक्सीमेटली 350 माइल्स की रेंज. इमरान अहमद कहते हैं अपार्ट फ्रॉम टीएलपी इज ऑब्वियस और हिडन एजेंडा इज इन वॉयलेंस, हाउ डू यू सी गवर्नमेंट प्रॉमिसेस एंड मिसहैंडलिंग ऑफ द एंटायर इश्यूज एंड लेटर ऑन पंजाब पुलिस ब्रुटैलिटी एज यूजुअल अगेंस्ट एनी प्रोटेस्टर्स. आई थिंक ब्रुटैलिटी आपको एक तरफ ही नजर आ रही है, मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ इस बात के ऊपर. लेकिन बहरहाल जी अपना अपना इस मामले को देखने का नजरिया है, मैं इसमें ज्यादा अपना वक्त जो है वो स्पेंड नहीं करूंगा. याया कहते हैं आज के बच्चे कल बड़े होंगे, सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बच्चों को जाएं तो गाड़ी ऐसे ना चलाएं कि बच्चों की गलत तरबियत का बाइस हो. सिग्नल पर ना रुकना, रॉन्ग वे पर आना, वालदैन का एक अमल बच्चों के लिए मशाल राह होता है, अच्छी तरबियत करें. थैंक यू सो मच याया, बहुत शुक्रिया. एंड याया यू आर द वन आई मेट एट द एयरपोर्ट वंस, राइट, मुझे याद आ रहा है कुछ वैसे. बट आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, बिल्कुल जी, हमें खुद अपने बिहेवियर से बच्चों की तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए. जैसे आप करेंगे वैसे ही कल आपके बच्चे भी करेंगे, आप जैसी जबान इस्तेमाल करेंगे आपके बच्चे वैसी जबान इस्तेमाल, जैसे अखलाक आपके होंगे वो काफी हद तक बच्चे विल पिक अप, बिकॉज फॉर देम दैट वुड बी लाइक द नॉर्मल बिहेवियर. शुड नॉट लुक अप टू देयर पेरेंट्स, उनके वालदैन उनके हीरो होते हैं, इस वजह से अच्छा बिहेवियर करें. आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आप खुद जब गाड़ी चला रहे होंगे, आप गंदी गंदी से कोई सामने गाड़ी चला रहे हो कितना गुस्सा आता है. यू वॉन्ट टू बी that sort of a person के आपके बारे में कोई ये सोच रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. अभी अच्छा शाहीन ताहिर थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी. एंड आसिफ हयात कहते हैं व्हाट इकोनॉमिक बेनिफिट विल सोसाइटी हैव विद सच प्राइस हाइक फॉर टेस्ला. नहीं सर मैं समझा नहीं, थोड़ा सा मुझे इलेबोरेट करवा दीजिएगा. लिए चलते हैं आपको अभी हम ब्रेक की जाने मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, the Sunrise Show with me Adil and good morning jin doston ne program abhi tune in kiya subah ke 7:55 minute ho chuke hain. Acha ji Sayyed Siraj Munir sahab jo hain kehte hain aakhirkar alhamdulillah aakhirkar corona ki amwaat single digit par aa gayi hai, inshaallah bahut jald inshaallah ye ek din sifar par ho jayengi. Ji bilkul aapne durust farmaya, mashallah corona ki jo amwaat ka silsila hai wo ab single digit mein hai, and that's been after a very very long time because ये बात याद रहे कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो आती रही हैं, डिफरेंट वेव्स जो हैं वो आती रही हैं कोरोना की, और उसमें देर हैव बिन टाइम्स जहाँ पे भी जो हमारी जो बिल्कुल हमने ट्रफ एक्सपेक्ट किया है वहाँ पे भी सिंगल डिजिट में नहीं आई थी. I'm so sorry. Okay, जी. अचानक छींक आ गई. Okay. So, बहरहाल, yes. So, there were 9 deaths yesterday. अभी तक का NCOC का नंबर मैंने अपडेटेड उनका ट्वीट देखा नहीं. I'm sure उनकी वेबसाइट अपडेट हो गई होगी, वो जाके हम देख लेंगे. But positivity ratio जो है, that's been around 1.5%. And Allah has been very kind. चलें जी, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर जो है ना वो नजर डालते हैं. वज़ीर आज़म इमरान खान अल-मुमलिकतुल अरबिया तो सऊदी में है, जहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो कल उनका इस्तकबाल किया, रियाद में उनसे जो है वो मुलाकात भी की, और उसमें ज़्यादातर अखबारात ने, इनफैक्ट 3 में से 2 अखबारात ने उनके इस खिताब को जो है वो अपनी लीड बनाया. एक्सप्रेस का लिखना है वज़ीर आज़म कहते हैं मसला कश्मीर हल कर दे, भारत से कोई झगड़ा नहीं, अच्छे हमसाये के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं. T20 वर्ल्ड कप में पिछाड़ा, ये मैच पर बात करने का मुनासिब वक्त नहीं. अफगान बदहाली से बचने के लिए अपना किरदार अदा करें. जी इसके अलावा शाह सलमान के विजन 2030 की तारीख, ओके, वली अहद बहरीन से भी उन्होंने मुलाकात की है. सऊदी अरब के लिए के तहफ्फुज़ के लिए पुरअज़म पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश, कल और आज दो अहम इजलास तलब किए गए हैं. ऑलराइट, डॉन ने भी अपनी जो लीड बनाई है, डॉन ने इनफैक्ट आज काफ़ी प्रोमिनेंस के साथ तस्वीर भी शाया की है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है MBS के साथ. और ठीक हो गया जी, लिखना क्या है डॉन, इमरान अर्जेस सीरियस जॉइंट एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज, सेज 10% कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% कार्बन एमिशन, नॉट अ गुड टाइम फॉर टॉक्स विद इंडिया आफ्टर T20 विक्ट्री, मीट्स बहरीन प्रीमियर डिस्कसेस फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज विद जॉन कैरी. ऑलराइट, लेकिन जंग ने जो अपनी आज लीड बनाई है सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में, जाहिर है जी एक बार फिर से सुनवाई शुरू हो रही है और आपको पता है कि इसमें काफ़ी शोर शराबा होता है. एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर इसमें है नस्ला टावर के हवाले से, और नस्ला टावर का आपको पता है कि ढाने का, उसको गिराने का जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है. जनरली लोगों का ख्याल यही है कि ये बहुत सख्त डिसीजन है, लोगों ने ये रेगुलराइज ज़मीन है, ये लीगल लोगों ने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस की हैं, अपनी जमा पूंजी से ये अपार्टमेंट जो है ये खरीदा है. और अब तो सुप्रीम कोर्ट इस लेवल तक जा चुकी है कि उन्होंने कहा है कि नस्ला टावर को बारूद से उड़ा दें, फौज की मदद से कार्रवाई एक हफ्ते में मुकम्मल करें, हुकूमत रिहायशों को मालिक से रकम वापस करे. तलबी पर वजीर आला सिंध पेश, हुकूमत के पास पैसे नहीं, विफाक पैसे दे नहीं रहा है. विफाक आ गया तो क्या करेंगे. अच्छा बेसिकली मुराद अली शाह कहते हैं कि विफाक पैसे दें हमें इसके. वाह, आई मीन SPCA वगैरह सब सूबाई इदारे, लेकिन इसमें कॉम्पनसेशन के लिए विफाक से पैसे चाहिए. यार कमाल है यार. चीफ जस्टिस गुलजार कहते हैं विफाक आ गया तो क्या करेंगे, लेक्चर ना दें, टीवी पर बैठकर बात करना और शहर चलाना जो है ना वो अलग झाड़ है, अलग अलग बात है. झाड़ पिला दीजिए एडमिनिस्ट्रेटर कराची को. मुर्तजा वहाब है, कहते हैं जी मैं सिर्फ अपने बोलने का हक इस्तेमाल कर रहा हूँ. चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कराची में बरसों से यही हो रहा है, यहाँ लोग का माल बनाकर बैरून मुल्क चले जाते हैं, अब कोई रियायत नहीं मिलेगी. वल्ला आलम जी इसमें क्या क्या चीफ जस्टिस साहब जो भी बातें कर रहे हैं, किसको पकड़ा गया, कौन सा SBCA का बंदा, बड़े बड़े चोर कराची में हुर्फे आम पर है, लोगों को पता है कि एक बंदे का नाम जिसने ये हाल किया है शहर का, लेकिन क्या हो रहा है. अब देखें ये नस्ला के हवाले से कहते हैं इसको बम से उड़ा दें. यार बम से उड़ाने का एक सर्टन प्रोटोकॉल होता है. जिन लोगों ने नस्ला टावर देखा, मैं दिन में दो दफा वो रास्ता इस्तेमाल करता हूँ, यार उसके बराबर में एक फ्लाईओवर बना हुआ है, इट्स अ वेरी बिजी फ्लाईओवर, उसके पीछे रिहायशी प्लॉट्स हैं, ऐसे कैसे बम से उड़ जाएगा ये. एनीवे, भारतीय शिकस्त पर दिल्ली से मकबूजा कश्मीर तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, हिंदू इंतहा पसंद पाकिस्तानी फतह पर मुश्तइल, मुसलमान क्रिकेटर शामी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम शुरू हो गई है, कश्मीरियों पर हमले भी हुए हैं, महंगाई का 70 साल रिकॉर्ड टूट गया, 3 साल में खाने पीने की अशिया दुगनी महंगी, घी तेल नर्ख सबसे ज्यादा 133% इसमें इजाफा हुआ है, चीनी 84%, आटा 52%. और चलें जी ये एक सर्वे जो है वो शेयर किया है आज मुख्तलिफ अखबारात ने, सो इमरान खान साहब के लिए लम्हा फिक्रिया उनकी उनके लिए. नवाज शरीफ का खुर्शीद शाह से टेलीफोनिक रब्ता, उनकी रिहाई पर मुबारकबाद दी है. वाओ जबरदस्त जी, दैट्स ग्रेट. और इसके अलावा डॉन का क्या लिखना है, BAP नॉमिनेट्स बिजिंजो एज न्यू लीडर ऑफ द हाउस, जान जमाली गेट्स नॉट फॉर द स्पीकर, TI डिसाइड्स टू नॉमिनेट रिंद मसाखेल फॉर द टू ऑफिसेस. इसके अलावा हसीना डिजायर स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद मजीद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं द सनराइज शो विद मी अदील, एंड दिस इज वेल 8:07 हो चुके हैं. ठीक है जी, अभी एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी वो वहां से इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए आप जो है ना वो टाइम बता दिया करें हर दफ़ा. तो चले मैंने कहा आपको अभी तो फिलहाल मैं टाइम बता देता हूँ कि 8:00 जो है ना वो 7 मिनट. अच्छा जी, अभी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन जो है वो ये है दैट जरा हम खेलों के बारे में बात करते हैं. ऑफ कोर्स स्पेसिफिकली लेट्स टॉक स्पेसिफिक स्टफ मैन, सीरियसली लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड T20 और वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप, जिसमें कल मैच खेला गया अफगानिस्तान और क्वालिफायर स्कॉटलैंड के दरमियान, और इंतहाई हद तक जो है ये यक तरफा मुकाबला साबित हुआ. इस मैच में अफगानिस्तान ने 130 रन से कामयाबी हासिल की. क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में दिस इज अ ह्यूज विन, एंड स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट T20, दिस इज एन एब्सोल्यूट राउट. ओके जी चलें, पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 190 रन बनाए 4 विकेटों के नुकसान पे. हाईएस्ट स्कोरर इनकी जानिब से रहे नजीबुल्ला जादरान, जिन्होंने 34 गेंदों पे 59 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे. छोटी बाउंड्रीज हैं शारजा की, इसका भरपूर फायदा कल अफगानिस्तान के बैट्समैन ने उठाया, बैटर्स ने उठाया, बैट्समैन यू नो इट्स नॉट अ जेंडर न्यूट्रल वर्ड. सो बहरहाल चलें आगे बढ़ते हैं. रमान उल्ला गुरबाज ने 46 रन बनाए 37 गेंदों पे. बहुत देर से मच्छर तंग कर रहा है मुझे और मेरी पूरी एफर्ट चल रही है कि इसको इसका सर्वनाश किया जाए. एनीवे चलें जी ओके. हजरतुल्लाह जाजाई ने 30 गेंदों पे 44 रन बनाए जिसमें 3 छक्के और 3 चौके शामिल थे. एवरीबॉडी कंट्रीब्यूटेड विद अ लॉट ऑफ रन. 4 विकेटों के नुकसान पे 190 रन बनाए यहां पे अफगानिस्तान ने. और जवाब में स्कॉटलैंड के सिर्फ 3 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए. इट वॉज अ डिजास्टर सीरियसली. मुजीबुर रहमान ने जो है वो 4 ओवर्स में 20 रन दिए और उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया. वाओ अमेजिंग. राशिद खान ने 9 रन दिए 2.2 ओवर्स में और 4 खिलाड़ियों को आउट किया. एक रही सही विकेट जो थी वो नवीन उल हक को जो है वो मिली. एंड आई डोंट नो आई मीन इन व्हाट सॉर्ट ऑफ हरी दीज गाइज वर, बट बहरहाल राशिद हुए, मुजीब हुए, ये जो स्कॉटलैंड की टीम थी दे वर एब्सोल्युटली टोटली क्लूलेस अगेंस्ट देम. एंड वेल व्हाट टू से, आई थिंक 130 रन 60 रन पे उन्होंने आउट किया स्कॉटलैंड की टीम को. So, बहरहाल जी तो अफगानिस्तान इज लुकिंग गुड. इन फैक्ट दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ. उनका नेट रन रेट इज 6.5. सो पाकिस्तान का 0.973 है. ओके जी अब बात करते हैं हम जरा आज के मैचेस के हवाले से. आज जो पहला मैच खेला जाएगा इस T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 में उस 4T20 वर्ल्ड कप, नाम भी बदलते रहते हैं ये लोग ना बार बार टूर्नामेंट का. अच्छा इस टूर्नामेंट का 18वां मैच ग्रुप वन में हम जाएंगे आज दोपहर में 3 बजे मैच होना है साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज. ये मैच दुबई स्पोर्ट्स सिटी में होगा और जाहिर है वेस्ट इंडीज के लिए ये इनफैक्ट दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है बिकॉज दोनों टीमें अपना जो ओपनिंग मैचेस हैं वो हार चुकी हैं. वेस्ट इंडीज तो काफी बदतरीन अंदाज में हारा, साउथ अफ्रीका ने फिर भी एक लो स्कोरिंग मैच में They did put up a very good fight against Australia. इस वजह से साउथ अफ्रीका का जरा नेट रन रेट भी जो है वो थोड़ा फेवरेबल, लेकिन वेस्ट इंडीज का नेट रन रेट इज -3.9. याद रहे जी 55 रन पे आउट हो गए थे पहले मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड और खासतौर से स्पिन बॉलिंग के सामने ज्यादा जम नहीं पाए. साउथ अफ्रीका के पास भी हैं स्पिनर्स, ऑफ कोर्स वी नो केशव महाराज इज गोइंग टू बी देयर और तब्रेज़ शम्सी विल बी देयर एज वेल जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं. वेस्ट इंडीज वालों को जरा अकल और समझ से खेलना पड़ेगा. हर बॉल पे छक्का मारना और उसकी अटेम्प्ट करना ये इनकी टीम के साथ जरा है प्रॉब्लम. इट्स एन एक्सप्लोसिव साइड, वंस दे गेट गोइंग दे आर क्वाइट एक्सप्लोसिव बट वंस दे डोंट दे आर एक्चुअली क्वाइट बैड. सो बहरहाल जी रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है, 2 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके शोल्डर पे इस चीज की आती है. सो लेट्स सी वॉट दे डू अबाउट दैट. And South Africa had a reasonable run in before the World Cup, lekin they have lost their first game, of course, to Australia. As I said, ठीक हो गया जी. बाकी क्या सिचुएशन है? बाकी सिचुएशन फिर हम बात करते हैं जरा पाकिस्तान के मैच के हवाले से. पाकिस्तान के लिए आज इस लिहाज से न्यूजीलैंड के खिलाफ एक इंपॉर्टेंट गेम है कि पाकिस्तान naturally अगर आज का पाकिस्तान is off to a good start, we know that, okay? इंडिया के खिलाफ एक अच्छी बड़ी वाजे कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की और अगर आज पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो फिर पाकिस्तान काफ़ी हद तक अपनी सेमीफाइनल के लिए जो जगह है वो बुक करने में कामयाब हो जाएगा. वेरी डिजास्ट्रस परफॉर्मेंस आफ्टर दिस वुड स्टॉप पाकिस्तान. लेकिन जो सिचुएशन है देखिए जी बात बड़ी सिंपल है. अभी कोई कह रहा था कि यार आप इतने ऑप्टोमिस्टिक आज के मैच के हवाले से क्यों हो रहे हैं. मैं ऑप्टोमिस्टिक इसलिए हो रहा हूँ आज के मैच के हवाले बिकॉज मैं इस मैच के हवाले से शुरू से ऑप्टिमिस्टिक था. देखिए 2-3 वजूहत इसकी हैं. एक तो ये कि पाकिस्तान जनरली अगेंस्ट न्यूजीलैंड अनलेस हम कोई कामरान अकमल टाइप रॉस टेलर किस्म के एरर्स ना करें वी जनरली ब्रिंग आर गुड गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड टूर्नामेंट. जो बड़े लेवल के टूर्नामेंट होते हैं बड़े पैमाने के टूर्नामेंट होते हैं पाकिस्तान उसमें जनरली अच्छी कारकर्दगी न्यूजीलैंड के खिलाफ दिखाता है. यस आई डू रिमेंबर पिछला वर्ल्ड कप में मोहाली में जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान that was a game that Pakistan should have won. अगर आपको याद हो ये लाला का पेनल्टीमेट मैच था और डे एंड नाइट मैच खेला गया था मोहाली में और इसमें हुआ ये था कि पाकिस्तान जब चेस कर रहा था then शर्जील खान got Pakistan off to a very explosive start अहमद शहजाद उनके साथ मौजूद थे. वो तो एक तरफ से जरा रोटेट कर रहे थे स्ट्राइक को, लेकिन शर्जील खान वॉज प्लेइंग प्रीटी वेल. लेकिन फिर अचानक, और पाकिस्तान वॉज देयर, दे आर ऑन देयर वे, दे वर क्रूजिंग टूवर्ड्स अ विक्ट्री. लेकिन फिर उसके बाद उमर अकमल एंड अहमद शहजाद डिड समथिंग दैट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. एंड बाय द टाइम दे गॉट आउट, शाहिद आफरीदी और आने वाले खिलाड़ियों के लिए मैच बचाना बहुत मुश्किल हो गया था. पाकिस्तान, आई रिपीट, वी शुड हैव वन दैट गेम, लेकिन बहरहाल अब क्या जा सकता है. लेकिन बहरहाल जी, अब यूएई में ये टीमें मौजूद होंगी, और यूएई में जो है पाकिस्तान का जनरली रिकॉर्ड जो है वो अच्छा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड. हमने जो 24 मैचेस खेले हैं इनके खिलाफ, पाकिस्तान 14 मैचेस जीतने में कामयाब हुआ और 10 में पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त हुई है. लेकिन अगर आप यूएई में आते हैं, मुत्तहद अरब अमारात में जब आप खेलने को आते हैं, तो फिर तो कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही एक कामयाब जगह रही है. 7 मैचेस जो अब तक खेले गए हैं दोनों टीमों के दरमियान, 6 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है और 1 में पाकिस्तान को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा इस मैदान में. अगर शारजा में ये दोनों टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं, बट दैट डजंट रियली मैटर, विकेटों के मिजाज में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं. हाँ, शारजा में जो एक फर्क होगा वो ये कि दुबई के मुकाबले में छोटा ग्राउंड है, बाउंड्रीज यहाँ पे निस्बतन छोटी होती हैं, थोड़ा सा इसमें जाहिर है. वी नो दैट काफी एक्सप्लोजिव हिटर्स न्यूजीलैंड के स्क्वाड में जो है वो आते हैं, स्पेशली अप द ऑर्डर्स. अगर आप बात करें, मार्टिन गैप्टल इज गोइंग टू बी देयर ऑफ कोर्स, और अगर आप न्यूजीलैंड की जनरली, आई मीन वी नो केन विलियमसन इज नॉट अ वेरी is not a very explosive sort of a batsman, लेकिन बाबर के साथ इनका comparison बार-बार बनता है. लेकिन जाहिर है एक खिलाड़ी जिस पर मेरी नजरें होंगी वो होंगी डेवॉन कॉनवे. और डेवॉन कॉनवे जो है उनका जो करियर है, जो इंटरनेशनल करियर है, इट हैज गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट. आई मीन ही हैज बीन स्कोरिंग रन्स इन ऑलमोस्ट ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम. और अगर हम T20 इंटरनेशनल के हवाले से बात करें, तो अब तक जो 11 इनिंग्स कॉनवे ने खेली हैं, उसमें उन्होंने 59 की एवरेज से और 151 की स्ट्राइक रेट से 443 रन, उन्होंने 11 इनिंग्स खेली हैं और उसमें 4 में ये बंदा जो है वो हाफ सेंचुरी स्कोर कर चुका है. सो आई रियली होप दैट पाकिस्तान हैज डन देयर होमवर्क अगेंस्ट डेवॉन कॉनवे, बिकॉज आई थिंक इफ यू आस्क मी फ्रॉम दिस मैच, दिस इज वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर. बाकी वी नो दैट इट इज अ वेरी वेरी balanced side. New Zealand is a bits and pieces side. I mean, of course, Kane Williamson is an exception. He's a world-class batsman. Duniya ke top batsman mein se ek hai. Bahut bada fighter bhi hai. Lekin New Zealand ke agar aap history check karenge, isko bits and pieces team kaha jata tha. Yani har bande ka ek apna role hota tha. Wo apne role ko samajhta tha. The sum was much, much bigger than the parts. Okay, ji. So, ye na, yani ke, jaise kuch एक टीम में 4-5 स्टार होते हैं. न्यूजीलैंड नेवर हैड दोस 4-5 स्टार्स, जो सुपर स्टार्स इन देयर टीम, बट वो जब कंबाइन होके एक एज अ टीम खेलते हैं, दे आर अ मच बिगर साइड. डेफिनेटली स्पिन को देखें, स्पिन विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इश सोदी इज देयर, डेफिनेटली कैन कॉज प्रॉब्लम टू पाकिस्तान. पाकिस्तान को आपको पता है कि इश सोदी जिस टाइप की नेचुरली बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान के लिए जरा थोड़ा सा मुश्किल ही क्रिएट करते हैं. इसके अलावा मिचेल सेंटर अपनी वो बेस्ट फॉर्म में तो नहीं थे जो 2019 के वर्ल्ड कप में जिसकी किस्म की फॉर्म में थे, बट स्टिल ही कैन बी अ वेरी गुड, इट्स अ वेरी बैलेंस्ड साइड. ठीक है जी, तो मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन इफ यू आस्क मी, आई वुड पुट पाकिस्तान फेवरेट्स फॉर टुडेज गेम. एंड लेट्स विश एंड लेट्स प्रे दैट दे पुट अप देयर ए गेम, एज आई से, स्पेशली जैसा कि पाकिस्तान जनरली वर्ल्ड टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ करता रहा है. लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. हमारे पास फरहान सईद विद साथिया. काफी दिनों बाद शो के दरमियान मैंने कोई गाना चलाया, बिकॉज जरा मैं ये तो नहीं कहूँगा इश्तेहार कुछ जो है वो कम थे, लेकिन आज मैं टाइम पे जो है ना वो चल रहा हूँ. मैं ज्यादा अपनी लिंक्स को मैंने ड्रैग नहीं किया, स्पेशली आफ्टर 8. ऑलराइट, दिस इज द सनराइज शो विद अदील. आवर प्रोग्राम में इफ यू विश टू पार्टिसिपेट लाइक यू गाइस आर, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. एंड तसव्वुर नकवी साहब, देखिए सर, आपने अब उनको काले तो लिख दिया है, लेकिन आपको पता है ना कि आजकल के दौर में ये काफी नस्ल परस्ताना या रेसिस्ट लव्स जो है, मैं आपकी सिर्फ, आप मेरे भाई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जरा लोगों के मेयार बदल चुके हैं रेसिज्म के हवाले से, बहुत सारी चीजों के हवाले से. और इसलिए जरा बहुत सारी बातें हैं, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हम हमेशा काली आंधी सुनते आ रहे थे, लेकिन काली आंधी ना हो, अगर आप आज के लिए, आज के दौर में ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो फिर इसको नस्ल परस्ताना फकरा जो है वो कंसिडर किया जाएगा. इसलिए बहुत एहतियात कीजिए. हम बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज में काम कर रहे होते हैं जहाँ पे स्पेशली हमारे वो दोस्त जो कि मल्टीनेशनल या इंटरनेशनल क्लाइंट्स या इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स के साथ डील कर रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए. लोगों की जो सेंसिटिविटीज हैं वो आज के दौर के लोगों की, हमारे दौर व्हेन वी वर ग्रोइंग अप बैक इन 90s एंड ऑल, उसके मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी मुख्तलिफ हैं. मैं जैसा अभी बता रहा था उमर शरीफ साहब का जब इंतकाल हुआ था, तो मैं उनके कुछ पुराने ड्रामे ऐसे ही निकाल के यूट्यूब पे देख रहा था और उसमें वाकई इस तरह के कुछ जोक्स थे. मैंने कहा आज अगर उमर शरीफ साहब ये जोक्स कर देते तो ये फिर सोशल मीडिया पे वायरल होने थे और उनकी ऐसी क्लास होनी थी उमर शरीफ साहब की. लेकिन खैर चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. देन वी हैव गॉट ए हुसैन. प्लीज वेलकम अमल आबिद इन योर शो फॉर द फर्स्ट टाइम. हेलो अमल, इफ यू आर स्टिल लिसनिंग, वेलकम टू द प्रोग्राम. इसके अलावा यूसुफ नवाब कहते हैं, भाई इतना खर्चा तो हमारी कुल तालीम पर नहीं हुआ जितना रेड येलो और पिंक डे ने करवा दिए हैं. यार ये जो स्कूलों की कहानियां होती हैं, हम तो खैर बैठ के सिर्फ हंसते हैं, मी एंड माय वाइफ, ये येलो डे, पिंक डे, नारंगी डे, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं स्कूल यार, लगे हुए हैं यार, और पेरेंट्स भी बेचारे गुलाम बने हुए. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अशफाक जंजोआ कहते हैं, आफ्टर इंडिया मैच देयर इज अ फीलिंग दैट द वर्ल्ड कप कैंपेन इज ओवर. वेल द मंकी इज ऑफ द बैक नाउ. यानी वो एक जो एक मसला था, एक जो एक बोझ था, अब वो हमारे कंधों से वो तो उतर गया है. सो आप कह रहे हैं कि हाँ बाकी वर्ल्ड कप में अब जो हो सो हो, लेकिन नहीं यार, आई थिंक वी नीड टू कम आउट ऑफ इट. जस्ट इमेजिन, हम लोग इस सोच से गुजर रहे हैं, इमेजिन व्हाट द क्रिकेटर्स वुड बी गोइंग थ्रू. उनके लिए एक तो हमारे यहाँ वही मसला हो गया ना कि पाकिस्तान का उन्होंने फौरन ही दूसरा इतना बड़ा मैच रख दिया न्यूजीलैंड के साथ. खिलाड़ियों को कितना इम्पोर्टेंट होगा कि वो, और आपने बाबर की वो तकरीर भी सुनी जो बाबर ने बात की, जो वो टीम मीट कर रहे थे आफ्टर द मैच, कि यार प्लीज उस वो भूल जाए. अब इंडिया को हमने हरा दिया, डेढ़ दिन हम सेलिब्रेट किया, नाउ इट्स ओवर. ये हमारे लिए आसान नहीं है, तो जस्ट इमेजिन व्हाट प्लेयर्स वुड बी गोइंग थ्रू. उनके लिए कितना आसान, कितना मुश्किल होगा उनके लिए कि यार इंडिया की वो जो यूफोरिया जो है उसका, वो जो एक एक, एक मजा था उसका, उसको साइड पे करके नाउ फोकस ऑन द न्यूजीलैंड गेम. आई होप हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा अर्शद गुमरो कहते हैं, भाई जब से ये हैशटैग वाला सीन हुआ है आप भाई का एक भी ट्वीट शामिल नहीं कर रहे. ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका नाम इतना मुनफरिद है, हमारे तो लिस्टर्स गवाही दे देंगे कि उन्होंने आपका दो दिन पहले जो है ना वो ट्वीट सुना होगा. तो अर्शद साहब ऐसा बिल्कुल कोई सिलसिला नहीं है, आपका मैसेज मैंने शामिल किया. मैसेजेस काफी बढ़ गए हैं, मुझे नहीं पता कि इसका हैशटैग से ताल्लुक है या नहीं, बट लेट्स सी. ज़ियाद दुआ कर रहे हैं ये पाकिस्तान की कामयाबी के लिए. फरहान रजा कहते हैं, रिक्वेस्ट टू ऑल द लिसनर्स एंड पाकिस्तानीज, होप फॉर लेस लाइक वी डिड इन इंडियाज मैच. इंशाल्लाह वी विल डू इट अगेन, इंशाल्लाह वी विल. आसिफ हयात कहते हैं, अदील भाई दिस 130 रन विन फॉर अफगानिस्तान इज गोइंग टू हर्ट मैनी. Remember, we could not recover with a 110 run loss against West Indies. I'm not in favor of two small teams to compete in such tournaments. Well, sir, West Indies ne aapki team ko haraya tha itne bade margin se. Isliye ye aise nahi kehte sir, ye chote teamein bhi aksar badi teamein choti teamon ki tarah behave karti hain. West Indies 56 runs par out ho gayi. To West Indies to badi team hai na sir. Ha, lekin yahan jo Afghanistan ko advantage mila hai, this is going to hurt a lot of team. Hasan Sheikh jo hai wo kehte hain, brother Rahul wali to waqai mein no ball thi. Nahi ji, bilkul no ball nahi thi. I think wahi baat hai ki hum out of the context Hasan jab cheezon ko dekh, hamari apni zindagi mein aksar aisa hota hai na, out of the context cheez hai, hum ek certain point in time ek tasveer dekhte hain ya ek perspective dekhte hain aur us pe apna opinion bana lete hain. No ball jo hai na wo decide hoti hai on the point of impact, yani jahan pe aake बॉलर का कदम पड़ता है. आपने जो ये तस्वीर देखी है, ये जो इंडियन सोशल मीडिया पे बाज़ इंडियन लूजर्स जो हैं वो वायरल कर रहे हैं कि यार ये तो नो बॉल थी, नो बॉल थी, नहीं आप ये बॉल कराते हुए देंगे. इनफैक्ट ये आई थिंक चेक की गई थी, दिस गॉट चेक फॉर अ नो बॉल. लेकिन जहां पे इसका पाउ लैंड हुआ था, फास्ट बॉलर्स में ये टेंडेंसी होती है कि बॉल कराने के बाद उसका पाउ थोड़ा सा स्किट करता हुआ आगे जाता है, तो ये स्किट होने के बाद की तस्वीर है हसन, ये नो बॉल नहीं थी. दैट वाज प्रीटी प्रीटी क्लियर. ऑलराइट जी, वासिफ अजीज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट थिंक्स कराची इज अ प्लेयर प्लेस वेयर दे कैन अप्लाई देयर फैंटेसीज. बॉम्ब से उड़ा दो आस के पास की. सीरियसली आई मीन कुछ समझ में नहीं आया मुझे ये मेरे ख्याल से गुलजार साहब खुद चीफ जस्टिस साहब विजिट करें उस जगह की. मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, उस वो जो नस्ला टावर है, देखें वो बना इलीगल है लेकिन रेगुलराइज करवा के बना गया उस जमीन पे ना. और बल्कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, यार कभी आप उस सर्विस रोड पे जाएं, आपको उसकी इलीगैलिटी बिल्कुल ऑब्वियस हो जाएगी. सर्विस रोड चल रही है, अचानक खत्म हो जाएगी, नस्ला टावर वहां पे आ गया. आई मीन सीरियसली, वो ना एक पॉइंटेड एरो किस्म की जो है ना, वो एक सर्विस रोड का हाल किया हुआ है. लेकिन रेगुलराइज हो गया. पकड़ो उन लोगों, उन चोरों को पकड़ो. अच्छा बिल्डर वहां पे मौजूद है, बाय द वे बिल्डर हियरिंग में आ रहे हैं. बिल्डर ये कह रहा है जी मैं वो लोगों को पैसे दूंगा जो उन्होंने बुकिंग के टाइम पे मुझे दिए थे. जाहिर है बुकिंग उस वक्त अगर करोड़ सवा करोड़ की होगी, आज वो प्रॉपर्टी जो है अगर नॉर्मलाइज हो जाते हैं हालात, 3.5-4 करोड़ की तो प्रॉपर्टी है मेन शहर फैसल पे, इतनी जबरदस्त जगह पे. कोई तबड़ा फ्लैट भी नहीं, लेकिन कराची में प्रॉपर्टी प्राइसेस जाहिर है आजकल है ही ऐसी. सो लोग ये कह रहे हैं यार मैं मार्केट वैल्यू दो, आप मुझे 1.5 करोड़ रुपए पकड़ा दोगे, उसमें मुझे क्या मिलेगा इस वक्त 1.5 करोड़ में कराची में? तो इस वक्त सीरियसली कुछ भी नहीं मिल रहा है यार. लालू खेत आप चले जाएंगे वहां पे आपको घर ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी. सो लोगों का ये पर्सपेक्टिव. अच्छा लोग तो कह रहे हैं भाई हम तो नीचे नहीं उतर रहे यहाँ से, आओ हमें इस बम के और साथ उड़ा दो इसको. तो ये लेकिन ये जो बम से उड़ाने वाली बात है ना यार, वो बराबर में जैसे हम शारे कायदीन फ्लाईओवर कहते हैं वो हो गया, पीछे घर बने हुए हैं यार, कैसे ये बम से उड़ा दें? बम से उड़ाने का एक सर्टन, चाइनीज आपको पता है बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े उस्ताद हैं बम से उड़ाने के. ये बिल्डिंग्स जो है वहाँ पे जो गोस्ट टाउन्स बने हुए हैं या गोस्ट बिल्डिंग्स हैं, गोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बम से उड़ा देते हैं. बट इतना आसान नहीं है. किस तरह ये प्रोटोकॉल फॉलो होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. चीफ जस्टिस साहब कुछ सुनने के मूड में भी नहीं है. ऑलराइट, ये अहमद अली अरबानी साहब ने एक ट्वीट मेरे साथ शेयर किया है. ये अभिजीत अय्यर मित्रा है यार, ये कोई बहुत ही बड़ा जो है ना ये लूजर आदमी है, और इसने जो है ना वो कुफर टूट गया. अच्छा वो जो वो कुफर टूट गया यार, इतना मशहूर वो जो शेर था कुफर टूटा खुदा खुदा करके, वो उसने जो है ना ये हमारे बाजिद खान ने जो है ना कुफर टूटने की बात की, तो उसने ना उसने अपने दिल पे ले लिया, उसने अपने दिल पे ले लिया कि ये कुफर जो है वो बेसिकली हमें हमारी बात कर रहा है कि हमने कुफर को जो है ना वो शिकस्त दे दी है. अच्छा मैं फिर ये देख रहा था शेख रशीद साहब की स्टेटमेंट की भी मैं बात कर रहे थे, जी उन्होंने मुसलमानों की फतह की बात की एंड ऑल. यार एक तो शेख रशीद साहब ने कई वहां पे हिंदुओं को शिकस्त देने की बात नहीं की है यार, आई मीन किस तरह. अच्छा मुझे अफसोस ज्यादा ये होता है जब हमारे पाकिस्तानी जो है ना वो पैकी बैशिंग में आते हुए, शेख रशीद से उनका सियासी इख्तलाफ है, वो शेख रशीद को बैशिंग शुरू कर रहे हैं. भाई शेख साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की है यार जिसमें उन्होंने बोला होगा हमने हिंदुओं को शिकस्त. बल्कि मेरे पास हमारे इंडिया में दोस्त पुणे में होते हैं किरण पंडारे साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये शेख रशीद ने हिंदुओं को ऐसा क्यों बोला है. मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं, क्लिप भेजें. उन्होंने मुझे क्लिप भेजा. अच्छा मैंने जब वो पूरा सुना मैंने कहा किरण भाई इसमें तो कहीं हिंदुओं का जिक्र नहीं हुआ हुआ, मैं तो बल्कि वेट कर रहा था अब वो हिंदू बोलेंगे, अब वो हिंदू बोलेंगे. वो कोई सवा मिनट की एक क्लिप है. उस पे फिर वहां पे राजदीप सरदेसाई हुए. ये एंटी पाकिस्तान में ना, एंटी पाकिस्तान होने में इंडिया में लिबरल और सेकुलर और भक्तों का कोई डिफरेंस नहीं है. दे ऑल हेट पाकिस्तान. जो वहाँ के मशहूर लोग हैं वो पाकिस्तान उनका एक फेवरेट बैशिंग टॉपिक है. लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी पाकिस्तानियों का बैशिंग टॉपिक है. शेख रशीद आप क्यों बैश क्यों कर रहे हो भाई? वो जुमला सुन लो उसका क्या बोला है यार उसने. बट बहरहाल तो फिर उस पर अच्छा मजेदार बात यह कि ये शेर जो है ये एक हिंदू शायरी थे पंडित जयाशंकर नसीम, उनका जो है ये शेर था. और उनके शेर जो है ना कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, उसको जो है वो उन्होंने इशू बना लिया कि यार ये जो है ना ये कुफर टूटने की बात कर रही है, आईसीसी एक्शन ले, बीसीसीआई एक्शन ले, जय शाह एक्शन ले, किस तरह इन्होंने जो है ना वो बात की. आई मीन खुदा की कसम यार, ये ट्वीट देखा आप लोगों ने? मैं बल्कि ये रीट्वीट करता हूँ ना, ये देखें इस इडियट का ट्वीट. ये बहुत बड़ा इडियट है यार, ये इसके ट्वीट्स आप चेक किया करें वैसे. खैर एनीवे या वा के माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील. थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन इन ऑल योर मैसेजेस एंड या ग्रेट. ऑलराइट, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाने के हवाले से और अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने के हवाले से, बिकॉज बच्चे हमसे ही सीखते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमारे दोस्त जो हैं हमारे दोस्त जाहिद खान साहब का मैसेज आया. वो बताया था कि उनके जो साहबजादे हैं वो लाहौर के एक बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स के लिए जो है ना वो बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं गाड़ियों के आने के लिए, क्यूइंग सिस्टम और ये सारी चीज़ों के लिए गाड़ियाँ क्यू बना कर आती हैं, बच्चों को ड्रॉप करती हैं और चली जाती हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहते ये हैं कि जी आज ये खातून जो है उन्होंने आज एक जो उनका चौकीदार था या वो जो मैनेज कर रहा था इस ट्रैफिक, उसके साथ काफ़ी बदतमीजी की. बिकॉज वो खातून जो है वो रूल्स ब्रेक कर जो है वो अपनी गाड़ी आकर लेना चाह रही थी, और वो चौकीदार उनको इन्फोर्स कर रहा था कि नहीं आपको जो है वो इसी लाइन में आना पड़ेगा. अच्छा प्रॉब्लम जो है ना वो जाहिर है, वो देखिए ये हर जगह है, ये हर जगह है. जिस भी आप सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में चले जाएंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नजर आएगी. लोग मोटरसाइकिलों में रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं. मोटरसाइकिल वाले सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं ना. एक शारा फैसल पे इतनी तेज गाड़ियां चल रही होती हैं बगैर साइड मिरर के, आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है. ये मेरे साथ परसों रात ये हुआ है, और उस बंदे को एहसास भी नहीं था दैट ही केम सो क्लोज टू हिज डेथ अलोंग विद हिज फैमिली. गाड़ी के साथ एक लेन चेंज करके वो सेंटर लेन में आ गया, और फिर अचानक उसने जो है ना यानी जिगजैग करती हुई गाड़ियां चल रही हैं. लेकिन जो सबसे ज्यादा कोफ्त होती है और तकलीफ होती है यार, वो जो आपके जो प्रिविलेज क्लास है ना वो जब इस तरह एक्ट करती है और जब बिहेव करती है, दिस इज आई वुड से के मैं क्या बोलूं, बिकॉज ये वो लोग हैं ये सोसाइटी उन्हीं के लिए काम, जो प्रिविलेज क्लास है ना आपकी, ये सोसाइटी उनके लिए ही काम करती है. लाइक दे आर द बेनिफिशियरी, दे आर द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द वे आर सोसाइटी इज बिल्ट. ये लोग बेहतरीन स्कूलों में भी जा रहे हैं, बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में भी जाएंगे, बिकॉज दे कैन अफोर्ड टू गेट द बेस्ट एजुकेशन. दे विल इवेंचुअली एंड अप इन गुड कंपनीज और मे बी हैंडलिंग देयर फादर्स बिजनेस, अपने वालदेन का बिजनेस चलाने के लिए. ये जब सड़कों पे निकलते हैं ना, तो इनमें जो एक प्रिविलेज वाला एलिमेंट होता है ना कि यार जैसे कि मैं कोई बड़ा तीर मार के अपनी जिंदगी में आ रहा हूँ, ये लोग बहुत डेंजरस हैं. बहरहाल जी, ट्राई टू मॉडिफाई योर बिहेवियर बच्चों के लिए, जो है ना वो अच्छी एग्जांपल आप क्रिएट करें, दैट एक्चुअली वुड बी अ वेरी गुड थिंग. मैं क्या क्या भाषण वाषण देने का मेरा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज देखें लेट्स सी क्या होता है. बट लेट्स सी. ऑलराइट जी, इमाद अली खान कहते हैं मेरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच ना देखना काम कर गया, अब कोई मैच नहीं देखूंगा. एंड ब्रेस योर सेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप विक्ट्री. थैंक यू इमाद, बहुत शुक्रिया. आपको कौम की खुशियों का बड़ा एहसास है. सो नाउ यू नो इट वेल. मीर अली रजा कहते हैं अदील बिल्डर को उस वक्त के हिसाब से डॉलर रिटर्न करे मसला है. डॉलर रिटर्न कुछ ना कुछ फॉर्मूला बनाया जा सकता है उस वक्त के हिसाब से, लेकिन ये भी बात है ना, क्या बिल्डर के पास उस लेवल की लिक्विडिटी इस वक्त मौजूद होगी कि वो ये काम जो है कर सकता हो. दैट रिमेन्स टू बी सीन. आई मीन यार, हम अरबों रुपए की बात कर रहे हैं यहाँ पे यार. नस्ला टावर अच्छा बड़ा टावर है, इसमें काफी सारे अपार्टमेंट्स होंगे. अच्छा जी, इसके अलावा अब्दुल अहद खान साहब कहते हैं चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात. चले यार, रहने वो कंटेम्प्ट हो जाता है भाई इस तरह की बातें करने में, लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है हमारे पास. फारूक सिद्दीकी साहब कहते हैं भाई हम आवाम किसी प्रोजेक्ट में बुकिंग करवाने से पहले किस तरह डिपार्टमेंट से इसकी सही होने पर लीगल होने की तस्दीक करें. चीफ जस्टिस साहब ये भी बता दें जिन बाबुओं ने लोगों को धोखा दिया, इलीगल को लीगल के सर्टिफिकेट दिए, उनको कौन पकड़ेगा. देखिए ना, मैं बड़ी, मेरे लिए जाती तौर से ये बड़ी परेशानी है, नहीं हरे हम सबके लिए ये एक बहुत हैरानी और परेशानी की ये बात है कि यार अब जब आइंदा हमें फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करने जाएंगे तो हाउ वुड वी नो, बिकॉज सी द नस्ला टावर लैंड हैड बीन लीगलाइज्ड. वो जमीन लीगलाइज कर दी गई थी. आप किसी भी वो चेन ऑफ डॉक्यूमेंट जो है या वो जो उसके मेन सबलीज या लीज पेपर्स हैं, आप जाके अगर वो चेक करेंगे विद द रजिस्ट्रार ऑफिस या जो भी आप किसी लीगल एडवाइजर को उस काम पे लगाएंगे, ही विल टेल यू दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स मैन, दिस इज फाइन, पीपल हैव इन्वेस्टेड. ज्यादा बड़ा हैंड जो है ना वो एक्चुअली इस मामले पे हुआ है. और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है ना वो प्रेसिडेंसेस क्रिएट हो चुकी हैं. बैरिया टाउन का केस हम जानते हैं, इस जमीन को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो लीगलाइज कर दिया था, ऑफ कोर्स आफ्टर पेइंग अ वेरी बिग अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट. मुझे नहीं पता मलिक रियाज साहब जो है पेमेंट्स टाइम पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे. सेकंडली कॉन्स्टिट्यूशन वन जो है आपका इस्लामाबाद में सरीना के सामने जो एक ऊंची सी एक बिल्डिंग बनी हुई है, इलीगल बिल्डिंग, उसको रेगुलराइज कर दिया गया आफ्टर पेमेंट सर्टेन अमाउंट, व्हाई नॉट नस्ला टावर. ऐसी क्या खास बात है इसमें, ये समझ में नहीं आ रही है बात कि कानून का इतलाक दो मुख्तलिफ केसेस में दो मुख्तलिफ तरीके से क्यों हो रहा है. मैं लीगल ओपिनियन, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, कोई मुझे गाइड कर सके तो बता दे, लेकिन मैसेज में आपका ऑनियर नहीं पढ़ूंगा. ठीक हो गया. ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अच्छा, मुझे अभी कुछ और भी बात करनी थी. आई वांट टू टॉक अबाउट मोहम्मद शामी एंड फेसबुक इन इंडिया. सो उसके हवाले से हम थोड़ी देर में बात, अगले लिंक में हम बात करेंगे. ठीक है जी, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील, और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Alright, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं in the Sunrise Show with Adil, and thank you so much for all your participation, all your messages. Sumaira Khan कहती हैं, we are also victim of the sports city Berria town, full khwar and helpless. काफी सारी helplessness है. मुझे नहीं पता आपने नईम साहब से, हाफिज नईम जो है जमात इस्लामी, यार वो बड़ा काम कर रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर. काफी सारे लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने काफी सारे रिफंड दिलवाए, यानी वो काम जो के पाकिस्तान के बड़े बड़े अरबाब इख्तियार नहीं कर पाए वो हाफिज नईम साहब करवा रहे हैं. सो आप रब्ता करके देखें उनका, आई थिंक इदारा है नूरुल हक, क्या मेरे खास नाम है उसका, मुझे नहीं पता उनका, लेकिन वहाँ पे वो खुद भी बैठते हैं और उनसे आप डील कर सकती हैं. वैसे काफी सारों को पैसे दिलवाए. थैंक यू सो मच रिजवान, थैंक यू फॉर योर काइंड मैसेज. और इसके अलावा मोहम्मद सिद्दीक साहब कहते हैं जी चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक नया वर्टिकल पावर का क्रिएट करना चाह रहे हैं. यार ये तो इसमें जो गुलरेज साहब कर रहे हैं, अच्छा जस्टिस गुलजार साहब जो कर रहे हैं, हाउ इज दैट डिफरेंट फ्रॉम साकिब निसार एंड आई मीन सी जिस जमाने में इफ्तिखार चौधरी साहब की वो एक मूवमेंट चल रही थी सो कॉल पाकिस्तान में एक क्या जी लॉ की सुपीरियरिटी की जो मूवमेंट चल रही थी, इस बात का ख्याल उसी वक्त किया गया था कि यार ये आप मुहिम चला के तो साइड पे हो जाएंगे, लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट. सो व्हाटएवर यू आर सीइंग इज द रिजल्ट ऑफ दैट एक्टिविज्म दैट वी सॉ. इफ्तिखार चौधरी साहब को आपने जो सराखों पे बिठाया था, सो अब आप देख लीजिए एंड हु इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ व्हाटएवर हैपेंड. That's fine. बहुत सारों के लिए मक्का फाते अमल साबित हुआ. वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट का हिस्सा थे वो बाद में आने वालों के आताब का शिकार बने. आगे क्या होगा देखते रहिए सर. चैलेंज जी, व्हाट एल्स हैव वी गॉट? या मोहम्मद शामी के साथ आपने देखा जी इंडिया में वो मैच, उसने काफी रन कंसीड कर दिया जिसपे सारा गुस्सा जो है वो इनके ऊपर उतरा. मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि विराट कोहली ने जो रिजवान को गले लगाया, अगर यहाँ विराट कोहली की जगह मोहम्मद असरुद्दीन होता और वो बदतरीन अंदाज में पाकिस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान के जो टॉप प्लेयर था उसको गले लगा लेता, फिर तो वो पक्का पक्का देशद्रोही बनना था, उसको तो पाकिस्तान आना ही आना था. सो अब ये जो गेम हुई है ये इनके साथ जो है ना इंडिया का एक बार फिर से उनकी सोसाइटी में जो स्किज्म है, उनकी सोसाइटी में जो एक जो डिवाइड क्रिएट कर दिया है और मोदी ने उसको वो नेक्स्ट लेवल पे ले गया है, वो उसका एक बार फिर से इजहार हुआ है. हाउएवर एक चीज जो इस बार डिफरेंट थी वो ये थी दैट इंडिया के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं दे हैव स्टूड अप इन फेवर ऑफ मोहम्मद शामी. आई वाज सरप्राइज टू सी सचिन तेंदुलकर ट्वीट. सबसे पहले पठान, इरफान पठान ने जो है वो ट्वीट किया था कि मैं भी इंडिया के लिए खेला हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ खेला हूँ, पाकिस्तान से हम हारे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कभी किसी ने कहा कि पाकिस्तान चले जाओ. ये एक टिपिकल इनका इंडिया में टॉन्ट होता है, बिकॉज मैं कल ये बात कर चुका हूँ, बिकॉज पाकिस्तान को वो इतना गिरा हुआ मुल्क समझते हैं, पाकिस्तान को इतना एक पत्थर के जमाने का वो मुल्क समझते हैं कि वो ये टॉन्ट देते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, ठीक है जी, बिकॉज तुम्हारी जिंदगी वहाँ तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगी, फलाना हो जाएगी. सो अब सीन ये कि पाकिस्तान की प्रिविलेज क्लास अपने मुल्क को जिस तरह बैश कर रही होती है, यानी प्रिविलेज क्लास वही लोग, वही खातून जो कि चौकीदार के साथ स्कूल की बदतमीजी कर रही थी सुबह लाहौर के एक मशहूर स्कूल के बाहर, जैसा कि साहिद खान ने मुझे किस्सा नरेट किया, ये वही लोग हैं जो सिस्टम जिनकी कहना चाहिए ना जूती की नोक पर है, लेकिन यही लोग पाकिस्तान की इतनी बैशिंग कर रहे होते हैं वहां पे. फिर जब लोग देखते हैं तो जाहिर है वो ये कहते हैं यार ये तो बलत तबाहल किस्म का मुल्क है यार, चलो जी ठीक है. सो पाकिस्तान को हमेशा टॉन्ट दिया जाता है उनको, जब पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ. अच्छा कल ये हुआ कि बहुत सारे फिर और सेलिब्रिटीज जो है ना दे स्टार्टेड कमिंग अप एंड स्टार्टेड फेवरिंग, आई मीन सचिन तेंदुलकर. आई वाज क्वाइट सरप्राइज टू सी तेंदुलकर ट्वीट. इंडिया की टीम के कुछ साबिक खिलाड़ी, हाल ही के जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने आगे भी जो है वो इनके फेवर में ट्वीट किया. मुझे नहीं पता कि गौतम गंभीर से तो मुझे उम्मीद नहीं है, वो तो पटाखों पे लगे हुए थे. वीरेंद्र सहवाग भी अंदर से भक्त है, याद रखिएगा, वो भी एक इंतहा पसंद हिंदू ही है और काफी जिंगोस्टिक किस्म का आदमी है. उनको जो है जी पटाखों की आवाजों से मसला हो रहा था, बिकॉज आपको पता है कि दिल्ली स्टेट जो है इनकी, वहां पे पटाखों पे पाबंदी है दिवाली में, कि दिवाली में आप पटाखा नहीं चला सकते. तो उसने कहा जी ये पटाखों की आवाजें अभी क्यों आ रही हैं. बेसिकली उस दिन करवा चौथ था और करवा चौथ में भी सुना है कुछ पटाखे वटाखे फूटते हैं, तो वो बहरहाल उस पे वो शायद कुछ गलत समझ गया वहां पे विराट, सॉरी अपने सहवाग. लेकिन बहरहाल ये एक रिफ्लेक्ट करता है सिचुएशन, एक माइंडसेट का, जिस तरह शामी को जो है वो इस तरह टारगेट किया गया इस चीज के हवाले से. हाउएवर टू माय सरप्राइज फिर भी काफी पब्लिक ओपिनियन मुझे इसके फेवर में ही नजर आ रहा है. आगे देखते हैं क्या होता है, इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी जाती है, इन चीजों पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है. अभी हाल ही में सोशल मीडिया के रोल के हवाले से हम बात करते चलें, एक इंडिया के हवाले से एक लीक्स जो है वो आई है फेसबुक की, और कहा यह है कि जी फेसबुक 2019 से उनके एल्गोरिथम्स वगैरह का जो है ना वो अपना इंटरनल रिव्यू कर रहा था, और ये कुछ लीक डॉक्यूमेंट जो हाल ही में लीक हुई हैं, एसोसिएटेड प्रेस के पास ये डॉक्यूमेंट्स आई हैं, जिससे ये बात क्लियर थी दैट फेसबुक वाज इन इंडिया वाज एब्सोल्युटली क्लियर कि इनका जो एल्गोरिथम है वो बायस्ड है. ओके जी, इनका जो एल्गोरिथम है इट इज, अगर मैं इसको अपने अल्फाज में कह सकूं, बाय डेफिनेशन एंटी मुस्लिम, वो मुसलमानों के खिलाफ था. अगर आप इंडिया में फेसबुक के शेनानिगंस को फॉलो करते रहें तो आपको पता चलेगा कि जी वहां पे वाकई एक बंदी जो उनकी चीफ एथिकल हेड हुआ करती थी वो एक भक्त थी, वो मोदी की बड़ी और बीजेपी की एक बड़ी सपोर्टर थी. तो वहां पे जितना भी कंटेंट जो मुसलमानों के खिलाफ कंटेंट था उसको बहुत ट्रैक्शन मिलता था और उस पर फैक्ट चेकिंग भी नहीं होती थी, उसको रिमूव भी नहीं किया जाता था. तो देयर वॉज अ बायस इन इंडिया फेसबुक. अब मेरे पास टाइम होता तो मैं इस रिपोर्ट की जरा तफसीलात में जाता, लेकिन वी नो इट प्रीटी वेल. इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है इंडिया में किस तरह सोशल मीडिया को, हेट को फैलाने के लिए जो इस्तेमाल किया गया. नाउ दीज ऑल थिंग्स आर कंपाउंडिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन मार्क ज़करबर्ग, बिकॉज़ इंडिया सबसे बड़ी मार्केट, आई थिंक 35 करोड़ के करीब फेसबुक ने अभी अपने नंबर्स रिलीज किए हैं. 2.9 बिलियन जो है लोग अपना वक्त जाया करते हैं हर महीने फेसबुक पे, दैट मीन्स देयर एक्टिव यूजर्स, वक्त जाया करने वाले लोग एक्टिव यूजर्स. और वहां पे फेसबुक जो उनको चाह रहा है दिखाना, आपकी जो टाइमलाइन है ना, गेम सारी टाइमलाइन की होती है, आपकी जो न्यूज फीड होती है, न्यूज फीड में आपको क्या दिखाया जा रहा है. मैं एक ब्रिटेन में एक सर्वे हुआ था, मैं वो रिपोर्ट देख रहा था कि आप अगर इंस्टाग्राम इज ओन्ड बाय फेसबुक, वही एल्गोरिथम यूज करता है जो फेसबुक यूज करता है, उसकी भी आपकी टाइमलाइन में अक्सर अनसोलिसिटेड आपके पास जो है ना वो पोस्ट आ रही होती है. आप किसी को फॉलो भी नहीं कर रहे होते लेकिन वो पोस्ट आपको आ रही होती है. क्यों? बिकॉज फेसबुक वॉन्ट्स यू टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग. आप अगर फर्ज करें कि कोई हेल्थ की चीज फॉलो करेंगे सो आपको एंटी वैक्सीन किस्म के लोगों की पोस्टें आनी शुरू हो जाएंगी. आई डोंट वॉन्ट टू सी दैट, बट डजंट रियली मैटर. वो किस तरह एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक जनरल टॉपिक को स्पेसिफिक करके आपको दिखवाना शुरू कर देते हैं. सो दैट इज द थिंग मैन. आई मीन सीरियसली, लॉन्ग टॉपिक, इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है और अक्सर वो नेटफ्लिक्स की उस डॉक्यूमेंट्री का जो है वो उसमें जिक्र किया जाता है सोशल डिलेमा के नाम से, कि ये डॉक्यूमेंट्री देख लेकिन इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट्री, डू वॉच दैट. एक्चुअली आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया कंपनी जो है ये किस तरह आपको मैनिपुलेट कर रही होती हैं. सो बहरहाल अभी वक्त नहीं है इसलिए मुझे आई हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट टाइम, 9 बजने वाले हैं, लास्ट मिनट है ये. ये भी आपको हम बताते चले कि अच्छा, मोहम्मद उमेर खान कहते हैं क्विट फेसबुक इन 2010, नेवर लुक बैक सिंस. दैट इज प्रीटी कूल एंड कंसीडरिंग यू आर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट माय फ्रेंड. That is quite good. अरे show is trending at number 5 right now. That's not bad actually. अच्छा जी चलें जी, great. अब वक्त आ गया. अच्छा जी, मेहनाज नवीद कहती हैं आप मेरा मैसेज शामिल नहीं कर रहे हैं. यार मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं किसी का मैसेज जानबूझ के नहीं छोड़ रहा. मैसेजेस या तो शामिल कर लें या फिर इन्फॉर्मेशन शामिल कर लें. आप मुझे आप बताएं ना फिर क्या किया जाए. सो मैं पूरी कोशिश करता हूँ सारे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज शामिल करूँ, बट रह जाता है तो बहुत बहुत माजरत. और आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे. चलें जी गाइज, तो पाकिस्तान विल बी प्लेइंग एट 7 PM टुडे, बिग मैच फॉर पाकिस्तान एंड वी विन इट एंड वी आर ऑलमोस्ट थ्रू टू द सेमीफाइनल. दो हफ्ते अपनी बड़ी ग्रुप टीमों के हम निकाल चुके होंगे. सो लेट्स विश आवर टीम ऑल द वेरी बेस्ट. मेरी आप लोगों से मुलाकात सुबह एक बार फिर होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. 107.4 मीडिया एफएम.